मेरे जिगरी दोस्तों, नमस्कार। आज 8 मार्च 2019 है और आज के इस afias.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर में हम लोग कल के ही विषय को आगे बढ़ाएंगे और कल हम लोग मानव ज्ञान के विकास पर बात कर रहे थे और बात करते करते हम लोग पहुंचे थे पशु पालन पर। चर्चा की शुरुआत हम लोगों ने अग्नि के प्रयोग करने से की थी और इसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था कि मनुष्य किस तरीके से लगभग 50,000 साल पहले गुफाओं में रहने लगा था और 30,000 वर्ष पूर्व के आसपास फिर गुफाओं में जो चित्रकारी मिलती है उसका समय निर्धारित किया गया और उसी दौरान उसने कुत्तों को पालतू बनाया। इस पर मैंने थोड़ी सी विस्तार से बात की थी और कुत्तों को पालतू बनाने के बाद से ही लगभग ये माना जाता है कि मनुष्य में यह भावना पैदा हुई कि नहीं, दूसरे जानवर भी हो सकता है कि पाले जा सके। तो धीरे धीरे उसका साहस बढ़ा, कुत्तों ने भी इसमें उसको सहयोग दिया, दूसरे पशुओं को भी उसके मन में यह भावना पैदा हुई कि पाला जा सकता है और उसने फिर कोशिशें की और लगभग 7 से 6 हजार वर्ष पूर्व उसने दूसरे पशुओं को पालना शुरू कर दिया। नो डाउट कि ये जो दूसरे पशु थे ये ऐसे ही थे जो उनके जीवन में काम आ सकते हों, जिनसे उसे दूध मिल सकता हो, जिनसे उसे मांस मिल सकता हो। जो मूल समस्या थी उस समय तो देखिए भोजन और सुरक्षा, इन दोनों की ही समस्याएं थी। तो ऐसे पशुओं को उसने पालना शुरू किया। जब वो पशुपालन के दौर में पहुंच गया मित्रों, तो ये माना जाता है कि उसी दौर के आसपास उसने बस्तियां बनानी भी शुरू कर दी, यानी कि स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया। और ये जो स्थायी रूप से रहना शुरू किया तो ऐसा नहीं कि वो बिखरे हुए कहीं कहीं कोई कोई रह रहा है। उनको लगा कि नहीं, कुछ लोग एक जगह अगर मिलकर साथ में रहें तो उन्हें इससे बहुत मदद मिल सकती है, क्योंकि देखिए अब पशु आ गए हैं उनके साथ में, सुरक्षा की भी उनको इस तरह की व्यवस्था उन्होंने सुरक्षा के लिए अपनी कर ली है। तो ये सेंस आया कि हम लोग साथ क्यों नहीं रह लेंगे, एक दूसरे की हमारी सुरक्षा भी बढ़ेगी, हम एक दूसरों की मदद भी करेंगे। और इसी के आसपास ही सच पूछिए तो खेती बाड़ी की भी उन्होंने शुरुआत कर दी, थोड़े से बाद में, पशु पालने के थोड़े से बाद में। तो जो सबसे पुरानी बस्तियों के जो अभी प्रमाण मिलते हैं, इसको आप बस्तियां भी कह सकते हैं और कृषि बस्तियां भी कह सकते हैं। कृषि बस्तियों का मतलब है कि अब उन लोगों ने किया ये कि जब वो अवलोकन के माध्यम से ही उन्होंने सीखा था कि वो देख रहे हैं कि पेड़ों से बीज नीचे गिर जाते हैं और वहां फिर से नए पौधे उगाते हैं, ठीक इसी तरह से उन्होंने दूसरी चीजें देखी, अनाज के बारे में देखी कि कोई कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन मान लीजिए गेहूं एक समय में आप ताज्जुब करेंगे कि ये जंगली घास मानी जाती थी, जंगली घास ही गेहूं था। बाद में व्यक्ति ने इसे इतना महत्वपूर्ण अपना खाद्य पदार्थ बनाया है, जंगली घास की तरह गेहूं होता था प्राचीनतम काल में। तब वो देख रहा है कि गेहूं हुआ है, अपने आप उग रहा है और इसमें उसके बाद दाने आ गए हैं और इसके बाद वो खत्म भी हो गया है और अगले साल फिर से गेहूं आ गया है। तो उसके मन में स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न आया होगा कि ये हो कैसे रहा है। तो धीरे धीरे वो समझ गया कि ये जमीन में गिरता है और फिर से उगाता है। तो उसने कहा कि ठीक है, ये सब कुछ तो अपने आप हो रहा है, इसको अगर हम करने लगे व्यवस्थित तरीके से तो हमारे लिए बड़े काम की चीज होगी। और उसने चख भी लिया था कि नहीं, इसको तो खाद्य पदार्थ में परिवर्तित किया जा सकता है। तब इसके लिए उसको जगह की जरूरत थी। प्राचीनतम काल की अगर आप कल्पना करें तो चारों तरफ जंगली जंगल रहा होगा, सुन सपाटा रहा होगा। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा करते हैं कि इन जंगलों को थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, पेड़ पौधों को काट करके रहने लायक जगह बना लेते हैं और खेती करने लायक जगह बना लेते हैं। और वहां फिर वो लोग रहने लगे और खेती भी करने लगे। तो इसे कहा गया कृषि बस्तियां। और इस तरह के प्राचीनतम कृषि बस्तियों के जो प्रमाण हैं वो बलूचिस्तान में मिलते हैं, राइट। अब व्यक्ति ने खेती करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, जो पहली खेती मानी जाती है जिन चीजों की गई होगी वो गेहूं और जौ की खेती। जैसा कि मैंने कहा कि गेहूं उस समय एक घास की तरह पैदा होता था, वो घास फूस की ही एक प्रजाति थी। आप नदी घाटी की सभ्यता वगैरह में जाकर के आप देखेंगे कि किस तरह से गेहूं हुआ करता था, दुनिया भर की गेहूं बिना किसी मेहनत के गेहूं। तो सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती की गई और इसके प्रमाण लगभग लगभग 6,000-5,000 वर्ष पूर्व के मिलते हैं। कृषि के बाद अब हम देखिए दूसरे क्षेत्रों में एंटर कर रहे हैं। हम दोस्तों 6,000 से 5,000 साल पूर्व के विकास की यात्रा कर चुके हैं। अब यहां से आपको यात्रा का एक दूसरा स्वरूप दिखाई देगा। मैं जिन नदी घाटी संस्कृतियों की बात कर रहा हूं उसका जो समय है, देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता का तो जो काल है वो लगभग लगभग 2,500 साल पहले का माना जाता है। 2 साल पहले कुछ और इस तरह के आविष्कार हुए हैं, तो उन्होंने अब इस 2,500 साल पूर्व को बढ़ाकर 4,500-5,000 साल पूर्व तक कर दिया है। लेकिन जो दूसरे सभ्यताएं हैं जैसे सुमेर की सभ्यता है और आप नील घाटी की सभ्यता पढ़ते होंगे, तो ये लगभग लगभग 3,500 साल पूर्व की हैं, 3,500 साल पूर्व की। और अभी हम जो पशुपालन पर आए हैं वो 7 से 6,000 वर्ष पूर्व में कृषि बस्तियां बन गई। ये कृषि बस्तियां तो बन गई, लेकिन ये कृषि बस्तियों में जो सबसे बड़ा संकट था वो दो तरह के संकट थे। पहला तो ये है कि वो बस गए हैं एक जगह पर, लेकिन जो खेती कर रहे हैं उनको ये अनुभव हुआ कि खेती को पानी की जरूरत होती है, और जब इनको पानी नहीं मिलता है तो उन्होंने देखा कि पूरी फसल नष्ट हो जा रही है, खेत खत्म हो जा रहे, गेहूं और जौ हो ही नहीं रहे हैं। लेकिन जिस साल उन्हें पानी अच्छा मिल रहा है उस साल वो अच्छा हो जा रहे हैं। तो मतलब एक उनके दिमाग में बात आई कि अगर इनको पानी दिया जाए तो ये हो सकते हैं। और फिर अब पशु पालने लगे हैं तो पशुओं को भी पानी की जरूरत है, गर्मियों में वो उसका अभाव महसूस कर रहे होंगे। और फिर वो ये भी देख रहे थे कि एक ही जगह पर जब वो खेती कर रहे हैं, देखिए उस समय उनको खाद की जानकारी नहीं थी कि कंपोस्ट खाद क्या होता है, ऑर्गेनिक खाद क्या होता है, या यूरिया सुपरफास्फेट क्या होता है। तो वो देख रहे हैं कि इसकी उर्वरकता भी कम हो रही है, अब पहले जितना अनाज पैदा नहीं हो रहा है, तो फिर उनको नई जमीन चाहिए। जब नई जमीन पर उन्होंने अनाज बोया तो बहुत अच्छा अनाज उत्पादन हुआ, तो उनको लगा कि नहीं, फिर तो यह है कि हमें मूव करना चाहिए, एक ही जगह पर रहना नहीं चाहिए। उस समय थोड़े से तो लोग थे, इतनी बड़ी धरती थी, आप कहीं भी चले जाइए। तो लोगों ने मूव करना शुरू किया, मतलब अपने पशुओं को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू किया। दोस्तों तो अब हम देख रहे हैं कि ये पशु संस्कृति कैसे अब मूव करने लगी है, जिसे आप एक प्रकार से घुमंतु लोग कह सकते हैं। और मूव करते करते जब ये नदी घाटियों में पहुंचे तो इन्हें लगा कि यार ये तो बहुत अच्छी जगह पर हम आ गए, हम तो यहां देख रहे हैं कि नदी बह रही है, इसमें हमेशा पानी रहता है, और पानी, इस पानी से हम अपने खेतों की सिंचाई कर सकते हैं, क्योंकि नदी के आगे का जो हिस्सा है वो सपाट है, यहां तो हम बड़े आराम से खेती कर सकते हैं, और इस पानी से सिंचाई कर सकते हैं, हमारे पशुओं को भी पीने का पानी मिल गया है, और हमारे लिए पानी है ही, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। तो अब आप देखिए जो कृषि बस्तियां बनी और जो नदी घाटी में जो बस्तियां बनी उनमें बेसिक अंतर क्या था, आप खुद सोच करके देखिए, तो आप एक महत्वपूर्ण जो अंतर है वो अपने दिमाग में ला सकते हैं। और आपको इतिहास को ऐसे ही पढ़ना चाहिए। अगर मुझे वक्त मिला तो मैं किसी एक घटना विशेष को लेकर के आपको इसके बारे में बताऊंगा कि इतिहास को पढ़ना कैसे चाहिए, और वो पढ़ना चाहिए इस सेंस में, इस रूप में कि आप अपनी तरफ से अनुमान लगा सकते हैं कि नहीं नहीं यही होगा, या अगर आपने पुस्तक में पढ़ा भी है किसी घटनाक्रम को या किसी इतिहास के किसी हिस्से को, तो आप मान सकते, पढ़ते हुए कह सकते, हाँ इसके बाद तो यही होना था, इसके बाद तो यही होना था, इसके बाद तो यही होना था। कल्पना करके देखिए कि अगर आपके अंदर वो दृष्टि पैदा हो जाए कि इसके बाद तो यही होना था, तो कितनी बड़ी बात हो सकती है। मित्रों हो सका तो मैं इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उसी पैटर्न को लेकर के मैं अभी थोड़ा चलने की कोशिश कर रहा हूं, इसीलिए थोड़ा सा वक्त भी ज्यादा लग रहा है। अदरवाइज एक एक लेक्चर में एक टॉपिक को खत्म कर देना बहुत आसान सी बात है, बल्कि एक लेक्चर 15 मिनट के लेक्चर में मैं 2 टॉपिक खत्म कर सकता हूं, मैं गिना सकता हूं कि ये इस सन में ये हुआ, इस सन में ये हुआ, इस सन में ये हुआ, लेकिन उससे आपको इन्फॉर्मेशन तो मिल जाएगी, इतिहास बोध नहीं मिलेगा, आपकी कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी। इसलिए थोड़ी माफी चाहते हुए मैं आप लोगों से यह अनुमति चाहूंगा कि मुझे इस तरह से विस्तार से बात करने की आप अनुमति दें। भले ही हम कम चीजें जान सके, लेकिन जो जान सके वो तो अपने आप में पूरी हो। तो देखिए, मैंने कहा कि कृषि बस्तियां जो पहले बनी, जो लगभग लगभग 7 से 6 हजार वर्ष पूर्व बनी, और नदी घाटी की सभ्यताएं जो 3,500 वर्ष पूर्व के आसपास विकसित हुई, इन दोनों में मूलभूत अंतर क्या है? उन कृषि बस्तियों का इतिहास हमारे पास क्यों नहीं है? हमारे पास जो इतिहास है वो नदी घाटी किससे शुरू क्यों होती है? देखिए, बहुत सिंपल सा उत्तर है, जिसका उत्तर इनफैक्ट मैं अभी आपको दे चुका हूं। उत्तर यह है कि जो कृषि बस्तियां बनी वहां पानी का अभाव था। साल, दो साल, तीन साल, चार साल वो रहते थे और फिर छोड़ करके चले जाते थे, तो हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है उनके, और वो कुछ विकास भी नहीं कर सके, क्योंकि एक जगह जब आप स्थायी रूप से नहीं रह रहे हैं तो आप और चीजों को कैसे डेवलप करेंगे? और चीजों को डेवलप नहीं कर सकते। लेकिन जब वो नदी घाटियों में आ गए तभी उन्होंने स्थायी रूप से निवास करना शुरू किया। अब उनको भटक करके, नदी घाटियों को छोड़ करके कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। और यहां तक कि जैसे अगर हम सिंधु घाटी की सभ्यता को लें, तो सिंधु घाटी की सभ्यता कैसे नष्ट हुई इसके बारे में कुछ लोग ये कहते हैं कि यहां बाढ़ आई और बहुत बुरी तरह से बाढ़ आई और उस बाढ़ के कारण सिंधु घाटी की सभ्यता नष्ट हो गई। ये एक प्रमाण दिया जाता है खुदाई के आधार पर जो लेयर्स मिले हैं। और अगर आपने मोहन जोदाड़ो फिल्म देखी होगी तो उसमें भी बकायदे इसी तथ्य को दिखाया गया है कि कैसे बहुत ज्यादा पानी आया और सभ्यता नष्ट हो गई। लेकिन आप देखिए कि सभ्यता के नष्ट होने के बावजूद फिर लोग वहां जाकर के बसे, फिर वहां जाकर के बसे, उसे ही तो हम फिर वैदिक संस्कृति कहते हैं। तो जो नदी घाटी हैं, ये सही मायने में संस्कृतियों के विकास के प्रस्थान बिंदु हैं, यानी कि शुरुआत है। इसीलिए इतिहास में हम यहीं से पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन मैं जानबूझ करके आपको पीछे से यात्रा करा रहा हूं। तो मित्रों, आइए अब हम सिंधु घाटी की सभ्यता तो उस पर और नदी घाटी की सभ्यताओं पर तो बाद में बात करेंगे। तो अब हम पहुंच गए हैं, गेहूं और जौ की खेती होने लगी है 6000 से 5000 वर्ष पूर्व, और तांबे का प्रयोग और कपास की खेती। तांबे का प्रयोग भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण, आप कह लीजिए कि विकास यात्रा का पड़ाव है तांबे का प्रयोग। और जब लोहे का प्रयोग हमने किया तब फिर तो आप यूं कह लीजिए कि चमत्कार ही हो गया। उस समय तो लोहा इतनी बड़ी शक्ति थी कि जिनके पास भी लोहा था उन्होंने ही युद्ध में जीत हासिल की। तो अब मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं, मेरी कोशिश होगी कि 2-3 मिनट में ही आपको आगे की चीजें मैं बता दूं। तो दोस्तों, तांबे और कपास की जो खेती है, तांबे का प्रयोग और कपास की खेती, ये 5000 से 4000 वर्ष पूर्व इसके प्रमाण मिलते हैं। फिर लेखन कला का जो प्रयोग करने का वक्त है वह 3000 से 2000 वर्ष पूर्व, और इसकी शुरुआत हुई थी मेसोपोटामिया में लगभग 3000 साल पहले। इसके बारे में हो सका तो जब मैं सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में बात करूंगा तब सुमेर की सभ्यता, तो उसके तहत इसकी चर्चा आएगी। फिर लेखन का प्रयोग हो गया मित्रों। इसके बाद फिर अब हल से कृषि की जाने लगी धीरे धीरे। देखिए, पहले कृषि हल से नहीं की जाती थी। हल तो एक फिर से बहुत बड़ा यंत्र है। उस समय तो ऐसे खुदाई करके जिस चीज से भी वो करते होंगे, पत्थरों से कर रहे हैं, कुछ और मिल गया नुकीली चीजों से कर रहे हैं। लेकिन जो हल से खेती की गई उसका प्रमाण हमें मिलता है 3000 से 2000 वर्ष पूर्व। अब देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता, हम नील नदी की सभ्यता, दजला फरात की घाटी, ये सब के सब 3500 वर्ष के आसपास पूर्व के हैं। तो 3000 से 2000 वर्ष पूर्व, अब आप इसको मैच कर लीजिए। देख रहे हैं ना, जब वो स्थायी रूप से रहने लगे तब फिर उनमें विचार करने की ताकत आई, उनको वक्त मिला, तब नई नई चीजों के बारे में वो सोचने लगे और फिर उन्होंने हल का आविष्कार कर लिया। तो हल से खेती करनी शुरू कर दी। अब चावल की खेती की भी शुरुआत हो गई। याद रखिए कि गेहूं की खेती की शुरुआत पहले हुई है, चावल की खेती की शुरुआत बाद में हुई है। चावल की खेती का समय क्या आ रहा है? 3000 से 2000 वर्ष पूर्व। और मैंने कहा था गेहूं और जौ की खेती का जो समय आ रहा है वो 6000 से 5000 वर्ष पूर्व। कुछ घटनाएं ऐसी हैं, अब एक साथ कई घटनाएं घटनी शुरू हो गई क्योंकि व्यक्ति अब स्थायी रूप से रह चुका है, आपस में बातचीत कर रहा है, देख रहा है, मिलकर काम कर रहा है। तो अब तेजी से देखिए, एक लेवल पर पहुंचने के बाद हम बहुत तेजी से विकास करने लगते हैं। आप कल्पना करके देखिए कि पहले कंप्यूटर आया था, राइट? कंप्यूटर आने में कितने हजार साल लग गए अगर हम ज्ञान सैपियंस को लेकर के चले तो। चिंतनशील प्राणी तो हो गया ना सैपियंस, 2,00,000 वर्ष पूर्व आ गया, और वहां से कंप्यूटर बनने में अगर आप 1950 मान ले मोटे तौर पर, सन 1950, तो 2,00,000 साल लग गए कंप्यूटर को बनने में। और जब एक बार कंप्यूटर आ गया तो जो आप अपने हाथ में स्मार्टफोन और चमत्कार देख रहे हैं, ये घटना कितने सालों की है? आपको नहीं लगता कि 70 साल में यह सब कुछ हो गया? इतना कमाल हो गया, विद इन 70 ईयर्स। उसी तरह से हम यहां भी देख रहे हैं। तो 3000 से 2000 वर्ष पूर्व बहुत सी चीजें हुई, हल से खेती की जाने लगी, चावल की खेती होने लगी, सिल्क का उपयोग होने लगा। आप नदी घाटी सभ्यताओं में देखेंगे बकायदे सिल्क के कपड़े मिले हैं, और घोड़े भी पाले जाने लगे। अब आप देखिए कि घोड़ा जैसा जानवर भी आ गया। इसके बाद मित्रों 2000 से 1900 वर्ष पूर्व नगर बनने लगे, महल बनने लगे, व्यापार भी होने लगा। जब आप सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि किस तरह से हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। देखिए वो 2500 वर्ष पूर्व से शुरू होती है, नगरीय सभ्यता थी, वहां बड़े बड़े भवन मिले हैं, महल मिले हैं, और बकायदे हमारा दूसरे देशों के साथ व्यापार होता था। ये यहां तक की कहानी है दोस्तों। इसके बाद चीजों का विकास बहुत तेजी से होने लगा, जिसे बताने की मैं जरूरत नहीं समझता हूं। लोहे का प्रयोग लगभग 1500 से 1400 वर्ष पूर्व हुआ, और इसके बाद सिक्कों का प्रयोग होने लगा। सिक्कों का प्रयोग हम खास कर पाते हैं गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के काल तक आते आते, यानी कि 600 से 500 वर्ष पूर्व, और इसके बाद 500 से 400 वर्ष पूर्व, यानी कि अभी से लगभग 2500 साल पहले एथेंस में नगर राज्य की स्थापना हुई, जिसे आप आधुनिक शब्दों में प्रजातंत्र कह सकते हैं। और अगर इसे हम भारत तक एक्सटेंड करें तो 600 से 500 वर्ष पूर्व ही हमारे यहां बौद्ध धर्म और जैन धर्म आया, और 321 वर्ष पूर्व मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। और लगभग इसी के आसपास हमारे यहां जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो रही है, लगभग इसी के आसपास चीन में भी एक साम्राज्य की स्थापना हुई। और इसी के साथ ही दोस्तों हम सही एक लिखित जो व्यवस्थित इतिहास होता है उसके दौर में प्रवेश कर जाते हैं। तो मित्रों ये थोड़ी सी बातें थी मानव के ज्ञान की विकास यात्रा के बारे में। मुझे नहीं मालूम कि आपको इस लेक्चर में कितना मजा आया होगा, कितना इंटरेस्टिंग लगने के साथ साथ कितना उपयोगी लगा होगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह नॉलेज आपको दूसरे स्टूडेंट की तुलना में डेफिनेटली बेहतर बनाएगा। तो दोस्तों अब इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। 2 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी और फिर नए विषय पर बात करेंगे। ये 2 दिन आपके शुभ हों, बहुत अच्छे तरीके से व्यतीत हों, मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। नमस्कार।